हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। धृति को जब होश आया तो उसने खुद को कमरे में पाया। वो चौंक कर उठ बैठी और आंखें बड़ी बड़ी करके पूरे कमरे को देखने लगी। कुछ देर पहले जो हुआ था उसे याद करते हुए वो सोचने लगी कि वो यहाँ कैसे आई। ठीक उसी वक्त बाथरूम का दरवाज़ा खुला और अर्णव ने कमरे में कदम रखा। धृति की निगाहें भी आवाज़ की दिशा में घूम गईं। दोनों की निगाहें टकराईं। इससे पहले कि धृति अपने मन में चल रहे सवाल को अर्णव के आगे बयान करती, अर्णव ने उनकी ओर कदम बढ़ाते हुए चिंता भरे स्वर में सवाल किया, अब कैसा महसूस कर रही हो तुम? अर्णव का सवाल सुनकर धृति हड़बड़ा गई और तुरंत सर हिलाते हुए बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर मैं यहाँ कैसे आई? जाहिर सी बात है कि बेहोश होने के बाद अपने पैरों से चलकर तो तुम यहाँ आ नहीं सकती थीं, और मेरे अलावा वहाँ कोई था नहीं जो तुम पर इतनी मेहरबानी करे, तो मैं ही तुम्हें घर लाया हूँगा। अर्णव आदत से मजबूर अब भी घुमाकर ही जवाब दे रहा था। उसका जवाब सुनकर धृति ने बुरा सा मुंह बनाया, फिर चेहरा फेरते हुए बोली, बहुत बड़ा एहसान किया आपने मुझ पर मैं वहाँ फंसी भी आपके ही वजह से थी। ना आप मुझे वहाँ भेजते, ना मैं उस गंदे से रिकॉर्ड रूम में फंसती और ना ही बेहोश होती। हाँ, मेरी गलती थी, पर मुझे नहीं पता था कि रिकॉर्ड रूम का दरवाज़ा खराब है। खैर, मेरे वजह से तुम्हें परेशानी हुई और मैंने तुम्हें बचाया, तो हमारा हिसाब बराबर हुआ। इसलिए अब मुझे ब्लेम करने के बजाय जल्दी से उठकर कपड़े बदलो, हाथ मुंह धोकर आओ, तब तक खाना भी आ जाएगा। अर्णव ने आज शांति से और इतने आराम से अपनी बात कही कि धृति बुरी तरह चौंक गई। क्या सामने अर्णव ही है या कोई और? कल तो वो फिर से खड़ूस बन गया था और अब फिर से उससे इतनी सॉफ्टली बात कर रहा है। गिरगिट जैसे कितनी आसानी से पल पल रंग बदलता है। यही सब सोचते हुए धृति आंखें बड़ी बड़ी करके अचंभित से उसे देखने लगी। जब अर्णव ने उसकी नज़रों को खुद पर टिके देखा तो भौहें चढ़ाते हुए बोला, अब क्या मुझे खाओगी? धृति उसकी बात सुनकर चौंक गई और अगले ही पल उसने हड़बड़ाहट में इनकार ने सर हिलाया। झट से बेड से उठकर बाथरूम की ओर दौड़ गई। अभी उसने बाथरूम का दरवाज़ा खोला ही था कि अर्णव की आवाज़ उसके कानों से टकराई, हाथ में चोट लगी है तुम्हारे, पट्टी पर पानी नहीं पड़ना चाहिए, अगर खुद से मैनेज कर लोगी तो ठीक है, वरना शीला को बुला देता हूँ, मदद कर देगी तुम्हारी। धृति, जिसने हाथ बाथरूम का दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ाया था, उसके हाथ हवा में ही ठहर गए। उसने अपने दाहिने हाथ पर बंधी पट्टी को देखा, फिर सर हिलाते हुए बोली, बुला दीजिए उसे। अर्णव ने सर हिलाया और कमरे से बाहर चला गया। कुछ देर बाद शीला कमरे में आई और अच्छे से उसके चेहरे और हाथ मुंह को साफ करने के बाद उसके कपड़े बदलने में भी मदद कर दी। फिर धृति को बेड पर बिठाकर वहाँ से चली गई। धृति बेड पर बैठी अर्णव के बारे में सोचने लगी। कभी तो वो उससे इतने आराम से बात करता है, उसकी परवाह करता है, पर कभी कभी अचानक उसे पता नहीं क्या हो जाता है कि अपने व्यवहार और शब्दों से धृति को पूरी तरह से तोड़ देता है। क्या सोच रही हो तुम? अचानक ही धृति के कानों में अर्णव की आवाज़ पड़ी, जिससे वो चौंक कर होश में लौटी। हड़बड़ाहट में आवाज़ की दिशा में निगाहें घुमाई तो हाथ में खाने की ट्रे लिए अर्णव उसी की तरफ बढ़ रहा था। नहीं, कुछ कुछ नहीं सोच रही हूँ मैं। अर्णव ने उसके झूठ को पलक झपकते पकड़ लिया और गहरी निगाहों से धृति को देखने लगा, पर धृति ने अपनी आंखों पर पलकों का पहरा लगा लिया। अर्णव ने उसकी हालत देखते हुए पलटकर कुछ नहीं कहा और उसके पास आकर बैठ गया, जिससे घबरा कर धृति थोड़ा पीछे सरक गई और आंखें बड़ी बड़ी करके घबराई हुई सी उसे देखने लगी। अर्णव ने उसके एक्सप्रेशन पर कुछ खास ध्यान ही नहीं दिया। उसने पराठे में सब्जी ली और निवाला धृति के मुंह की तरफ बढ़ाते हुए बोला, लो खाओ। धृति की आंखें हैरानी से फटी के फटी रह गईं। उसे अपनी आंखों और कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ कि सामने अर्णव बैठा है, जो उसे कितने ही लंच स्किप करवा चुका है ताकि उसे तकलीफ पहुंचा सके, और आज वही अर्णव उसके सामने बैठा उसे अपने हाथों से खाना खिला रहा है। हालांकि बीते दिनों उसने अर्णव का ये साइड भी देखा था, फिर भी वो हैरान थी। मुंह खोलने को कहा है मैंने तुम्हें, आंखें बड़ी बड़ी करने को नहीं कहा। चलो जल्दी से मुंह खोलो, खाना खाओ, फिर तुम्हें दवा भी लेनी है। धृति को मुंह ना खोलते और यूं आंखें फाड़े घूरते देखकर अर्णव ने खींचते हुए बात शुरू की, पर अंत तक आते आते वो सॉफ्ट पड़ गया और शब्दों में धृति के लिए परवाह झलकने लगी। धृति जैसे किसी गहरी नींद से जागी थी, पर उसकी हैरानी की अब भी कोई सीमा नहीं थी। उसने आंखें फाड़े अर्णव को देखा और अचंभित सी बोली, आप मुझे खिलाएंगे? धृति का सवाल सुनकर अर्णव ने आंखें छोटी छोटी करके उसे और गुस्से से जबड़े भींचते हुए बोला, अगर तुम्हारे पास दो बड़ी बड़ी आंखें हैं तो तुम देख ही रही हो कि मैं ही हूँ यहाँ, तो मैं ही खिलाऊंगा, और इतना ओवर रिएक्ट करने की भी जरूरत नहीं है तुम्हें। मेरे वजह से तुम्हें चोट लगी है, इसलिए मैं बस तुम्हारी थोड़ी हेल्प कर रहा हूँ ताकि तुम जल्दी से पूरी तरह से ठीक हो जाओ और आप फिर से मुझे तकलीफ पहुँचाने की, हर्ट करने के नए तरीके ढूंढ सकें। धृति ने अर्नव की बात पूरी की, जिसे सुनकर अर्नव हैरानी से उसे देखने लगा। ताज्जुब की बात नहीं थी, क्योंकि धृति ने वही कहा था जो कभी अर्नव ने उससे कहा था, पर शायद इस बार अर्नव के दिमाग में दूर दूर तक भी ऐसा कोई ख्याल नहीं था, इसलिए वो धृति की बात सुनकर कुछ चौंक सा गया और हैरानी से उसे देखने लगा। जबकि धृति के चेहरे पर अजीब सा दर्द झलक रहा था, आंखों में हल्की नमी के साथ उसकी बेबसी और पीड़ा भी झलक रही थी। उसने एक नज़र अर्नव को देखा, फिर निगाहें फेरते हुए बोली, मैंने पहले भी कहा है और अब आखिरी बार कह रही हूँ कि मुझे ना आपके किसी एहसान की ज़रूरत है और ना ही आपकी दया की। आपको जितना दर्द देना है दे दीजिए, शायद बाद में आपको ये मौका ना मिले। धृति की बात सुनकर जाने क्यों आज अर्नव का दिल गुस्से से भर उठा, पर उसने अपने गुस्से को अंदर दबाया और कठोर लहजे में बोला, हो गई बकवास, तो अब चुपचाप खाना खाओ। सारी रात तुम्हें खिलाने के लिए यहाँ बैठा नहीं रहूँगा मैं। मैंने आपको खिलाने कहा भी नहीं, रख दीजिए, मैं खुद से खा लूँगी। धृति ने भी उसी लहजे में जवाब दिया, जिसे सुनकर गुस्से में अर्नव ने अपने जबड़ों को भींच लिया। जब जब वो धृति के साथ सॉफ्ट पड़ता, उसके तरफ झुकता, धृति कुछ न कुछ ऐसा कर देती कि अर्नव का गुस्सा, उसकी नफरत उस पर हावी होने लगती। आज भी वही हुआ। कुछ पल धृति को घूरते रहने के बाद उसने ट्रे वहीं रखी और बेड से उठकर दो कदम पीछे हटकर खड़ा हो गया और हाथ बांधे उसे घूरते हुए बोला, लो खाओ खुद से। धृति ने हौले से निगाहें उठाकर एक बार अर्नव को देखा, फिर ट्रे की तरफ निगाहें घुमा ली। उसके दाहिने हाथ में चोट लगी थी तो उसने बाएं हाथ से खाने का फैसला किया, पर बाएं हाथ पर नील पड़ी हुई थी। हाथ उठाने और मोड़ने पर उसे तेज दर्द का एहसास हुआ और उसने अपनी आंखें भींचते हुए जीभ को दांतों तले दबा लिया। उसने रोकने की कोशिश तो बहुत की, पर फिर भी उसके मुंह से हल्की सी सिसकी निकल गई और आंखों से एक बूंद सीधे अर्नव के दिल पर गिरी। और एक बार फिर धृति के आंसू देखकर अर्नव का गुस्सा एक पल में गायब हो गया। उसने गहरी सांस छोड़ी और वापस धृति के पास बैठ गया, फिर उसके आंसुओं को अपनी उंगली से पोंछते हुए बोला, हर बात पर जिद करके मुझे गुस्सा दिलाना और अपनी तकलीफ बढ़ाना जरूरी तो नहीं, कभी कभी शांति से मेरी बात भी मान लिया करो तो हालात इतने ना बिगड़ें। धृति को उसकी गर्म उंगलियों का स्पर्श अपने गालों पर हुआ तो उसने चौंक कर अपनी आंखें खोली और आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगी। अर्नव ने उसकी बड़ी बड़ी आंखों में झांका, जिसमें अब भी हल्की नमी बाकी थी, फिर प्लेट में रखा बाइट उठाया और उसके तरफ बढ़ाते हुए सॉफ्टली बोला,
खाओ, तभी दवा खा सकोगी और उसके बाद ही तुम्हें इस दर्द से निजात मिलेगा। और जो दर्द आप मुझे पल पल दे रहे हैं, उससे कब आज़ादी मिलेगी मुझे? धृति के मन से तड़पती हुई आवाज़ आई, पर आवाज़ जुबान से बाहर ना आ सकी। वो बस आंखें बड़ी बड़ी करके एक टक उसे देखती ही रह गई। अब मुंह खोलो भी, मुझे देखते रहने से पेट नहीं भरने वाला तुम्हारा, उसके लिए मुंह खोलकर खाना खाना होगा। अर्नव ने आंखों से मुंह खोलने का इशारा किया तो इस बार धृति ने बिना नामुकुर किए मुंह खोल दिया। अर्नव उसे खामोशी से खाना खिलाने लगा और धृति उसे एकटक देखते हुए अपने ही ख्यालों में खोई खाना खाती रही। धृति को पूरा खाना खिलाने के बाद अर्नव ने पानी का ग्लास उसके लबों से लगा दिया। धृति की पलकें झुक गईं, उसने थोड़ा सा पानी पीकर ग्लास साइड कर दिया। अर्नव ने इशू से उसका मुंह साफ किया, फिर खाली बर्तन लेकर वहां से चला गया। कुछ पल बाद वो वापस लौटा और दूध के साथ उसे पेनकिलर खिलाने के बाद ऑइंटमेंट लेकर उसके पास बैठ गया और उसकी बाह पर दवा लगाने लगा। धृति सारे वक्त खामोशी से उसे देखे जा रही थी। अब तुम आराम करो, अर्नव ने पीछे हटते हुए कहा और एक बार फिर कमरे से बाहर चला गया। धृति कमरे के बंद दरवाजे को एकटक देखते हुए एक बार फिर अर्नव के बारे में सोचने लगी। अर्नव जब खुद डिनर करके कमरे में लौटा तो उसकी नज़र सीधे धृति पर पड़ी, जो तकिए से सर टिकाए बैठे बैठे सो गई थी। अर्नव उसके पास चला आया और उसे ठीक से बेड में लिटाकर उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया और खुद बेड के दूसरे तरफ आकर बैठ गया और एकटक धृति को देखने लगा। उसका छोटा सा मासूमियत भरा चेहरा हर बार अर्नव को सोचने पर मजबूर कर देता था। दिल से एक आवाज़ आती कि ये मासूमियत कोई छलावा नहीं, तो दिमाग उसका विरोध करता कि सब धोखा है। आज भी वही हो रहा था। अर्णव अपने दिल और दिमाग की दलीलों के बीच बुरी तरह उलझ चुका था। धृति को वो कुछ पल खामोशी से एकटक देखता रहा, फिर मन ही मन बोला, बहुत मज़ा आ रहा होगा ना तुम्हें। जो इंसान तुम्हें दुनिया भर का दर्द और तकलीफ देना चाहता है, वो तुम्हारी परवाह कर रहा है, तुम्हारा ख्याल रख रहा है। विश्वास नहीं हो रहा होगा तुम्हें कि ये मैं ही हूँ। पता है, कभी कभी मुझे भी भरोसा नहीं होता कि ये मैं ही हूँ। तुमने क्या से क्या बना दिया है मुझे। नफ़रत करता हूँ मैं तुमसे, बे इंतहा बेपनाह नफ़रत करता हूँ, पर पूरी शिद्दत से उस नफ़रत को निभाने में असमर्थ हूँ। मैं तुम्हें दर्द से तड़पते देखना चाहता हूँ, पर तुम्हें दर्द में देखकर जाने क्यों मेरा दिल तड़प उठता है। तुम्हें तकलीफ पहुँचाना चाहता हूँ, पर तुम्हारे आंसुओं को देखकर हर बार कमज़ोर पड़ जाता हूँ। अजीब कश्मकश में फंस गया हूँ। दिमाग जानता है कि तुम्हारे साथ जो हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है, इसी के काबिल हो तुम, पर दिल अलग ही धुन बजाता है। तुम्हारी मासूमियत पर विश्वास करके दिमाग की हर दलील को नकार देता है, जैसे तुम्हें गलत मानना ही नहीं चाहता। दिल और दिमाग के बीच बुरी तरह उलझ गया हूँ मैं। जब घर गया और सबको दर्द में देखा, तो सोचकर आया था कि उनके हर दर्द का हिसाब लूंगा तुमसे, पर उसके बाद से बहुत सी ऐसी चीजें हुईं जिसने मेरे इरादों को कमज़ोर कर दिया। सोचा था कि जब तक पूरी सच्चाई का पता नहीं चल जाता, तुम्हें लेकर मैं किसी निर्णय पर नहीं पहुंच जाता, दूर रहूंगा तुमसे। पर आज जब तुम्हें उस हालत में देखा तो सब भूल गया, और अगर कुछ याद था तो वो तुम थी। जब एहसास हुआ कि तुम अब तक ऑफिस में हो और शायद किसी मुसीबत में फंस गई हो, तो मन बुरी तरह घबरा गया था। शायद उस लम्हे में मैंने तुम्हें खोने का डर महसूस किया था। जब तुम मेरे आसपास नहीं थी तो मेरा मन बेचैन था। शायद उसे तुम्हारी मौजूदगी की आदत हो गई है। जब वहाँ तुम्हारी आवाज़ सुनी तो एहसास हुआ कि मेरी धड़कनें अब भी चल रही हैं। जब तुम्हारी चीख सुनी तो घबरा गया था मैं कि कहीं तुम्हें कुछ हो न गया हो। किसी तरह तुम्हें वहाँ से निकालने के लिए बेकरार था मैं, और जब तुम आकर मेरे सीने से लगी तो वो लम्हा वहीं थम गया था। तुम्हें अपनी बाहों में महफूज देखकर जान में जान आई थी मेरे, पर जब तुम मेरे सीने से लगकर रो पड़ी थी तो तुम्हारे आंसू सीने में ऐसी जलन पैदा कर रहे थे जैसे आंसू नहीं तेजाब बरस रहा हो उस पर। जब तुम मेरी बाहों में बेहोश हुई तो एक पल को ऐसा लगा जैसे सब खत्म हो गया, जैसे मैंने खो दिया तुम्हें। उस पल में महसूस किया था मैंने कि मेरा दिल कैसे तड़प उठा था तुम्हारे लिए। आंखें बेचैन थीं और कान तरस उठे थे बस एक बार तुम्हारी आवाज़ सुनने को। जब तक तुम्हें होश नहीं आया था, मेरी धड़कनें थम थम कर चल रही थीं। मन व्याकुलता से तुम्हारे होश आने का इंतज़ार कर रहा था। जब तुमने दर्द देने वाली बात कही तो चौंक गया था मैं, क्योंकि उस वक्त तो मैं तुम्हें दर्द देने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। तब अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हारे हर दर्द को मिटाकर तुम्हें बिल्कुल ठीक कर देता। नहीं करना चाहता था, फिर भी तुम्हारी परवाह करने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। असर तो तुम पहले दिन से करती थीं, तभी हर बार तुम्हें तकलीफ पहुंचाते पहुंचाते कदम पीछे हटा लेता था। तुम्हें दर्द में देखकर खुद बेचैन हो जाता था, पर अब सब बदल गया है। पहले अपने गुस्से और नफ़रत के पीछे उन अजीब सी फीलिंग्स को छुपा लिया करता था, पर सब ये बहुत मुश्किल लगने लगा है। पर मैं इन एहसासों को खुद पर हावी नहीं होने दूंगा। जब तक तुम्हारी बेगुनाही साबित नहीं हो जाती, मैं इन एहसासों को मेरे इरादों के बीच नहीं आने दूंगा। अगर मेरे दिमाग की जीत हुई और तुम गलत साबित हुई, तो तुम्हें ये परवाह नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरी नफ़रत मिलेगी, क्योंकि तब तुम मेरी नज़रों में इस काबिल ही नहीं होगी कि कोई तुम्हारी परवाह करे, तुमसे प्यार करे। तुम सिर्फ मेरी नफ़रत डिज़र्व करती हो, और तुम्हें मुझसे नफ़रत ही मिलेगी। जो दर्द तुमने हमें दिया है, वही दर्द सूद समेत लौटाऊंगा मैं तुम्हें। चाहे तुम्हें तकलीफ़ पहुंचाने के बाद खुद दर्द से तड़प उठूं, पर बदले में तुम्हें मुझसे सिर्फ दर्द ही मिलेगा। तुम्हें कभी इस दर्द से राहत नहीं मिलेगी। जैसी मैं कतरा कतरा मर रहा हूँ, तुम भी पल पल जलोगी इस नफ़रत की आग में। कुछ पल पहले जिन आंखों में धृति के लिए परवाह और कुछ अनकहे से एहसास झलक रहे थे, अब उन आंखों में सिर्फ और सिर्फ नफ़रत नज़र आ रही थी। अर्णव का पूरा चेहरा गुस्से से लाल था, और उस गुस्से में घुली थी उसकी नाराज़गी, उसकी विवशता। कुछ पुराने दर्द भरी कड़वी यादें उसके दिलो दिमाग पर हावी होने लगी थीं। अर्णव ने हकारत भरी नज़रों से धृति को घूरा, फिर नफ़रत से उस पर से अपनी निगाहें फेर लीं और करवट बदलकर उसके तरफ पीठ करके लेट गया।